मेडिकल साइंस की दुनिया में ना एक खास तरह की स्पष्टता होती है जो अक्सर बहुत सुकून देती है।
बिल्कुल।
मतलब मान लीजिए किसी व्यक्ति की हड्डी टूट जाती है, तो डॉक्टर क्या करेगा? वो एक्सरे रिपोर्ट को रोशनी के सामने रखेगा और सीधे उस सफेद दरार की तरफ इशारा करके कह देगा कि देखो समस्या यहां है।
हाँ, और इसे ऐसे ठीक किया जाएगा।
बिल्कुल, ये एक बहुत ही सीधा, कह सकते कि गणितीय या इंजीनियरिंग जैसा नजरिया है ना?
हाँ, और ये नजरिया इसलिए काम करता है क्योंकि इंसान को ऐसी चीजें पसंद हैं जिन्हें देखा जा सके, जिन्हें मापा जा सके और अलग अलग श्रेणियों में बांटा जा सके।
सही कहा।
मतलब ये हमें एक तरह का नियंत्रण होने का एहसास दिलाता है कि हाँ, चीजें हमारे हाथ में हैं।
लेकिन जब हम मानव मनोविज्ञान की बात करते हैं या गहरे मानसिक दबाव और घोर निराशा की दुनिया में कदम रखते हैं, तो ये एक्सरे मशीन पूरी तरह से बेकार हो जाती है।
बिल्कुल भी बेकार हो जाती है।
वहां कोई स्पष्ट दरार या सफेद रेखा नहीं होती जिसे देखकर कोई कह सके कि हाँ यहां दर्द है। इसके बजाय हम एक ऐसे परिदृश्य का सामना कर रहे होते हैं जो बेहद धुंधला और उलझा हुआ होता है।
हाँ, और मनोविज्ञान की भाषा में ना इसे डायग्नोस्टिक मडी वाटर्स यानी निदान का धुंधला पानी कहा जा सकता है।
मडी वाटर्स, हाँ।
क्योंकि मानव मन या किसी बड़े समूह की मानसिकता को समझना कोई बाइनरी कोड नहीं है कि जहां बस शून्य और एक के बीच चुनाव करना हो। ये बहुत बहुत जटिल है।
और इसी जटिलता पर बात करने के लिए आज हम ये डीप डाइव कर रहे हैं। हाल ही में मुझे एशलैंड थियोलॉजिकल सेमिनरी के प्रोफेसर डॉक्टर डेविड ए डी सिल्वा के कुछ व्याख्यान और बिब्लिकल ई लर्निंग से लिए गए उनके विस्तृत नोट्स पढ़ने का मौका मिला।
अच्छा।
हाँ, और उन्होंने लगभग 2000 साल पुराने एक प्राचीन पाठ का विश्लेषण किया है जिसे इब्रानियों के नाम संदेश या सर्मन टू द हिब्रूज कहा जाता है। और ये विश्लेषण ना इसी धुंधलेपन को सुलझाने का एक बेजोड़ मास्टर क्लास है। मतलब आज हमारा उद्देश्य किसी धार्मिक ग्रंथ का प्रचार करना बिल्कुल नहीं है,
बिल्कुल नहीं,
बल्कि हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे उस प्राचीन उपदेशक ने एक ऐसे समुदाय की मानसिकता को पूरी तरह से बदल दिया जो घोर निराशा और हार मानने की बिल्कुल कगार पर खड़ा था।
और सच कहूं तो संवाद और मनोविज्ञान की ये जो प्राचीन तकनीक है ना, ये आज भी लोगों को हार मानने से रोकने और उन्हें मानसिक रूप से सशक्त बनाने का सबसे प्रभावी तरीका है।
हाँ,
मतलब आज के दौर के हर नेतृत्वकर्ता और रणनीतिकार के लिए बहुत काम की चीज है।
तो इस रणनीति को गहराई से समझने से पहले उस समुदाय की वास्तविक स्थिति को समझना थोड़ा जरूरी है। मतलब डॉक्टर डिसिल्वा के नोट्स बताते हैं कि ये समुदाय भारी सामाजिक दबाव झेल रहा था।
बहुत ज्यादा दबाव।
लेकिन ये दबाव असल में था क्या? क्या ये कोई युद्ध था या कोई आर्थिक संकट चल रहा था?
देखिए, ये स्थिति पहली सदी के भूमध्य सागरीय समाज की है और वो समाज मुख्य रूप से सम्मान और शर्म यानी ऑनर एंड शेम की संस्कृति पर आधारित था।
अच्छा, ऑनर एंड शेम।
हाँ, तो जब इस समुदाय के लोगों ने अपनी पुरानी मान्यताओं को छोड़कर एक नया रास्ता चुना ना, तो उनके समाज ने उन्हें रातों रात बेदखल कर दिया।
रातों रात।
हाँ बिल्कुल। और इसका मतलब सिर्फ ये नहीं था कि लोग उनसे बात नहीं कर रहे थे, इसका सीधा असर उनके व्यापार पर पड़ा। उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया और उनके परिवारों ने भी उनसे रिश्ते तोड़ लिए।
मतलब एक तरह से पूरा सोशल बॉयकॉट हो गया।
बिल्कुल, वे लगातार एक मानसिक और सामाजिक बहिष्कार झेल रहे थे और हम जानते हैं कि ये किसी भी इंसान को भीतर से पूरी तरह तोड़ देने के लिए काफी होता है।
सही बात है। यानी वो उस बिंदु पर पहुंच गए थे जहां इंसान ये सोचने लगता है कि क्या ये सब संघर्ष किसी काम का है भी या नहीं।
बिल्कुल।
ऐसे में किसी भी वक्ता या उपदेशक का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? लोगों को बिंदु ए यानी उस निराशा के बिंदु से निकालकर बिंदु बी यानी एक मजबूत मानसिकता तक ले जाना। अब अगर आज का कोई मॉडर्न मोटिवेशनल स्पीकर ऐसे थके हुए हारे हुए लोगों के सामने खड़ा होता तो वो शायद सहानुभूति से शुरुआत करता।
हाँ, वो कहता कि मैं आपके दर्द को समझता हूँ।
हाँ, या फिर वो उन्हें डांटता कि तुम लोग हार क्यों मान रहे हो। लेकिन इब्रानियों के उस उपदेशक ने ये सब बिल्कुल नहीं किया
और यहीं पर वो उपदेशक अपनी बयानबाजी या कहले के रिटोरिक का मास्टर स्ट्रोक खेलता है। उसने अपनी बात की शुरुआत लोगों के दुखों से की ही नहीं।
अच्छा।
ना तो उनके खोए हुए सम्मान की बात की, ना उनकी पीड़ा की। इसके बजाय उसने सीधे ब्रह्मांड के रचयिता और ईश्वर या पुत्र की महानता की घोषणा से शुरुआत की।
ओह।
मतलब ऑलवेज गिव देम जीसस। उसने बताया कि कैसे वो ईश्वरीय कॉस्मिक शक्ति पूरे ब्रह्मांड के क्रम को चला रही है।
चलिए इसे डिकोड करते हैं, क्योंकि ये रणनीति सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है। मतलब लोग परेशान हैं और आप ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं।
हाँ, अजीब तो है,
लेकिन ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई फिल्म डायरेक्टर किसी डूबते हुए जहाज पर फंसे घबराए हुए लोगों से अचानक कैमरा हटा ले और सीधे आसमान में मौजूद एक विशाल चमकते हुए रेस्क्यू फ्लीट या बचाव दल को दिखाने लगे।
बहुत बढ़िया एनालॉजी है
ना। ये तकनीक उस डूबते हुए जहाज की समस्या के आकार को अचानक से बहुत छोटा कर देती है।
बिल्कुल। और यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है ना, वो ये है कि ये कोई पलायनवाद या एस्केपिज्म नहीं है।
अच्छा, मतलब वो सच्चाई से भाग नहीं रहे?
नहीं, उपदेशक लोगों को सच्चाई से भागने के लिए नहीं कह रहा है। देखिए, मनोविज्ञान का एक नियम है, जब कोई व्यक्ति लगातार अपनी समस्याओं, अपनी शक्तिहीनता और समाज द्वारा दी जा रही शर्मिंदगी पर ही ध्यान केंद्रित करता है, तो उसका दिमाग अंततः समझौता करने लगता है। इंसान सोचता है कि चलो यार, समाज के हिसाब से ही ढल जाते हैं ताकि ये दर्द तो कम हो।
हाँ, जब समस्या ही पूरी दुनिया बन जाती है तो इंसान बस उसी के स्तर पर सोचने लगता है।
ठीक यही बात है। इसीलिए जब वो उपदेशक उनका ध्यान उन सांसारिक समस्याओं से हटाकर एक बहुत बड़ी सत्य की ओर ले जाता है, तो वो असल में उन्हें सशक्त बना रहा है। वो उनका ध्यान कुछ पलों के लिए वर्तमान स्थिति से हटाता है ताकि जब वे वापस अपनी समस्याओं को देखें तो वे उन्हें किसी बहुत बड़ी आपदा के रूप में ना देखें।
मतलब एक छोटी सी रुकावट लगनी चाहिए जिसे पार किया जा सकता है।
बिल्कुल।
बहुत दिलचस्प है। लेकिन अगर इस ब्रह्मांडीय नजरिए को पहला कदम मान लिया जाए तो सवाल ये उठता है कि सिर्फ आसमान की तरफ उंगली उठा देना तो काफी नहीं होता ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं,
जमीन पर भी तो चलना है। तो उस उपदेशक ने इस नई ऊर्जा को टिकाए रखने और उनके वर्तमान संकट को परिभाषित करने के लिए आगे क्या किया?
इस सवाल का जवाब उसके अगले कदम में है। उसने एक बहुत ही चतुर नैरेटिव फ्रेमवर्क या कहानी का ढांचा इस्तेमाल किया। उसने अपनी मंडली की स्थिति को ना एक महाकाव्य जैसी प्राचीन ऐतिहासिक विफलता के साथ जोड़ दिया।
अच्छा, वो ऐतिहासिक विफलता क्या थी?
डॉक्टर डी सिल्वा के नोट्स में इसका जिक्र है। उसने नंबर्स 14 और भजन संहिता 95 का संदर्भ लिया, जहाँ प्राचीन इसराइलियों की विल्डनेस जेनरेशन की कहानी है।
अरे हाँ, ये वही कहानी है ना जहाँ में लोग मिस्र की गुलामी से आजाद हुए थे और रेगिस्तान से गुजर रहे थे?
हाँ बिल्कुल, वे अपनी वादे की भूमि यानी प्रॉमिस लैंड के बिल्कुल दहलीज पर खड़े थे। लेकिन जब उन्होंने उस नई जमीन के सामने आने वाली चुनौतियों को देखा तो वो डर गए। वे आगे बढ़ने के बजाय वापस मिस्र की गुलामी में लौटना चाहते थे।
गुलामी में क्यों?
क्योंकि कम से कम वहाँ उन्हें सुरक्षा और वो उबला हुआ मांस मिलता था।
ओ, समझ गया।
तो उपदेशक ने अपनी मंडली को समझाया कि देखो, बाहरी विरोध सबसे बड़ा खतरा नहीं है, सबसे बड़ा खतरा आध्यात्मिक काठिन्य या स्पिरिचुअल स्क्लेरोसिस है, मतलब दिलों का कठोर हो जाना।
आध्यात्मिक काठिन्य, अगर इसे हम मेडिकल टर्म स्क्लेरोसिस से जोड़कर देखें तो जिस तरह शरीर में कोई टिश्यू कठोर हो जाने पर अपनी लोच खो देता है।
हाँ, काम करना बंद कर देता है।
उसी तरह यहाँ दिमाग के कठोर हो जाने की बात हो रही है। जब इंसान का दिमाग अपनी न्यूरोप्लास्टिसिटी या सोचने की क्षमता खो देता है तो वो किसी बेहतर भविष्य की कल्पना ही नहीं कर पाता।
बिल्कुल। और तब वो वापस अपने पुराने आरामदायक लेकिन पूरी तरह से अर्थहीन जीवन की ओर मुड़ जाता है। उपदेशक अपनी मंडली को ये एहसास दिलाता है कि वे भी ठीक उसी तरह एक ऐतिहासिक दहलीज पर खड़े हैं।
अब यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, लेकिन मेरे दिमाग में एक गंभीर सवाल आ रहा है।
हाँ, पूछिए।
क्या ये लोगों के साथ एक तरह की मनोवैज्ञानिक चालाकी या मैनिपुलेशन नहीं थी? मतलब उपदेशक उन्हें यह एहसास दिला रहा था कि वो अपनी मंजिल के बिल्कुल दहलीज पर हैं, मानो बस एक कदम और सब ठीक हो जाएगा।
मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं।
जबकि वास्तविकता ये थी कि उन लोगों को उस दहलीज के बाद भी शायद दशकों तक संघर्ष करना पड़ा, तो क्या ये एक तरह से झूठी उम्मीद बेचना नहीं हुआ?
देखिए, डॉक्टर डी सिल्वा इसका बहुत ही तार्किक विश्लेषण करते हैं। वे मानते हैं कि यह कोई चालाकी नहीं थी, ये ढांचा अच्छे विश्वास में लागू किया गया था। यहाँ दहलीज का मतलब किसी भौतिक सीमा से नहीं है जिसे बस एक बार पार कर लिया और सब खत्म।
तो फिर उस दहलीज का वास्तविक अर्थ क्या था, मतलब मनोवैज्ञानिक रूप से?
मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से दहलीज ना जीवन के रोजमर्रा के चुनावों का प्रतीक है। हर दिन जब कोई व्यक्ति अपने पुराने आरामदायक जीवन और एक कठिन लेकिन सही रास्ते के बीच चुनाव करता है तो वो एक दहलीज पर ही खड़ा होता है।
अच्छा, हर दिन का चुनाव।
हाँ, जब भारी दबाव के बीच दिमाग में ये विचार आता है कि हार मान लूं या आगे बढ़ूं, वो पल एक दहलीज है। उपदेशक असल में संक कॉस्ट फैलेसी को एक सकारात्मक रूप में इस्तेमाल कर रहा था।
संक कॉस्ट फैलेसी?
हाँ, वो ये स्थापित कर रहा था कि देखो, तुम लोग इतनी दूर आ गए हो, इतना कुछ झेल लिया है, अब पीछे मुड़ना तो पूरी तरह से बेवकूफी है। आगे बढ़ना ही एकमात्र तार्किक विकल्प बचा है तुम्हारे पास।
समझ गया। मतलब जब आधी नदी पार कर ली हो तो वापस लौटने में भी तो उतनी ही ऊर्जा लगेगी जितनी नदी को पूरी तरह पार करने में लगेगी।
बिल्कुल सही।
इसलिए आगे बढ़ते रहना ही समझदारी है। ये एक बेहतरीन नैरेटिव है, लेकिन कोई भी मनोवैज्ञानिक ढांचा तभी काम करता है जब सुनने वाले मानसिक रूप से सोए ना हो, है ना?
हाँ, बिल्कुल।
अगर लोग बहुत आत्मसंतुष्ट हो गए हों या सुन पड़ गए हों तो उन्हें कैसे जगाया जाए?
और यही कारण है कि इब्रानियों के अध्याय 5 और 6 में ना उपदेशक अपनी बात के प्रवाह के ठीक बीच में एक ब्रेक लगाता है।
ब्रेक लगाता है?
हाँ,
वो कोई आसान या मीठी मीठी बात नहीं करता, बल्कि एक झकझोरने वाली चेतावनी देता है। वो श्रोताओं की जवाबदेही तय करता है। वो उनसे आध्यात्मिक परिपक्वता या स्पिरिचुअल मैच्योरिटी की उम्मीद करता है।
नोट्स में ये हिस्सा काफी चौंकाने वाला है। मैंने पढ़ा था कि उपदेशक सीधे तौर पर कहता है कि अब तक तो उन्हें शिक्षक बन जाना चाहिए था।
बिल्कुल, वो ये स्पष्ट करता है कि उन्हें जो महान अनुग्रह या ग्रेस मिला है ना, उसके बदले में एक मूल्यवान कृतज्ञता यानी कॉस्टली ग्रेटिट्यूड की मांग की जाती है। मतलब वे सिर्फ मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकते, उन्हें अपने समूह के उन लोगों को संभालना होगा जो डगमगा रहे हैं। और मजे की बात देखिए, इसके ठीक बाद वो आसान बातें करने के बजाय अगले 4 अध्यायों तक बहुत ही गहन और कठिन धर्मशास्त्रीय प्रश्नों के ठोस एकदम मीठी उत्तर देता है।
ये बिल्कुल फिटनेस की दुनिया के उस जिम ट्रेनर की तरह है जो देखता है कि सामने वाला थक चुका है, पसीने से लथपथ है।
हाँ, लेकिन फिर भी वो मशीन से वजन कम करने से साफ मना कर देता है, क्योंकि वो ट्रेनर जानता है कि इंसान को सिर्फ अपना ही वजन कम नहीं करना है, बल्कि एक दिन इतना मजबूत बनना है कि वो दूसरों को भी ट्रेनिंग दे सके।
बिल्कुल सटीक एनालॉजी है।
वो कोई आसान रास्ता नहीं देता, लेकिन मुझे ये समझना है कि उपदेशक ने जिन धर्मशास्त्रीय प्रश्नों के उत्तर दिए वो क्या थे। नोट्स में प्रायश्चित के लिए मानव बलि जैसी बहुत भारी बातों का जिक्र है।
तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। इन भारी शब्दों को थोड़ा सरल करके समझते हैं। प्राचीन दुनिया में ना अपराध बोध या गिल्ट से निपटने के लिए एक भौतिक तंत्र की आवश्यकता होती थी।
मतलब कोई कर्मकांड?
हाँ, लोगों को लगता था कि उनके पापों की माफी के लिए मंदिर और जानवरों की बलि जरूरी है। ये उनकी संस्कृति में बहुत गहराई तक बैठा हुआ था।
यानी बिना किसी भौतिक कर्मकांड के उन्हें मानसिक शांति मिलती ही नहीं थी।
बिल्कुल। और चूंकि ये समुदाय उस पुरानी व्यवस्था से अलग हो चुका था, तो उनके मन में खालीपन और डर आ गया था कि अब क्या होगा। तो उपवेशक इस डर को सतही बातों से शांत नहीं करता। वो एक गहरी तार्किक बहस खड़ी करता है। वो समझाता है कि पुरानी वेदी की बलि सिर्फ एक अस्थायी समाधान थी
जिसे बार बार दोहराना पड़ता।
हाँ, और इसके विपरीत वो ये स्थापित करता है कि ईश्वरीय पुत्र का बलिदान एक स्थायी और ब्रह्मांडीय समाधान है जो उन सभी पुराने कर्मकांडों को निरर्थक कर देता है।
ये बहुत ही प्रभावी तरीका है। मतलब उसने लोगों की बौद्धिक क्षमता का पूरा सम्मान किया। उसने उन्हें ये नहीं कहा कि अरे बस विश्वास करो और खुश रहो।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
बल्कि उसने समझाया कि तुम जो कर रहे हो उसका तार्किक और ब्रह्मांडीय आधार ये है।
और डॉक्टर डिसिल्वा इसे आज के संदर्भ में व्यस्त पादरी सिंड्रोम या बिजी पास्टर सिंड्रोम से जोड़ते हैं।
वो क्या होता है?
आज के समय में ना बहुत से लीडर्स रोजमर्रा के कामों में इतने उलझ जाते हैं कि वे कठिन और गहरे सवालों से भागने लगते हैं। वे बस हल्की फुल्की अच्छा महसूस कराने वाली बातें बता देते हैं।
हाँ, मोटिवेशनल कोट्स टाइप की चीजें।
बिल्कुल। लेकिन लोग असल में अपने जीवन के कठिन सवालों के गहरे तार्किक और अर्थपूर्ण जवाब चाहते हैं, क्योंकि कठिन विचारों से गुजरने के बाद ही एक मजबूत नींव बनती है।
सही बात है। तो इतने भारी ज्ञान, इन कड़ी चेतावनियों और गहरी धर्मशास्त्र की बातों का अंतिम लक्ष्य क्या था? मतलब अगर कोई किसी को इतनी चुनौती दे रहा है तो उसे किस दिशा में ले जाना चाहता है?
इसका अंतिम लक्ष्य था इंसान के भीतर मौजूद महानता और उत्कृष्टता पाने की उस अदम्य इच्छा को, उस पैशन फॉर एक्सीलेंस को जगाना और उसे एक सही दिशा देना। देखिए, हर इंसान में कुछ बड़ा हासिल करने, सम्मान पाने और सफल होने की एक भूख होती है। अक्सर आध्यात्मिक पाठों में इस महत्वाकांक्षा को दबाने की बात की जाती है।
हाँ, आमतौर पर संदेश यही होता है कि दुनियादारी छोड़ दो, सफल होने की इच्छा बुरी चीज है, मोह माया है।
लेकिन ये उपदेशक महत्वाकांक्षा को कुचलता नहीं है, बल्कि उसे एक नया रास्ता दिखाता है। वो समाज की सफलता के मॉडल्स को चुनौती देता है। मतलब सोचिए, आज के दौर में सफलता के पैमाने क्या है?
सिलिकॉन वैली के अरबपति दिग्गज हो गए या करोड़ों रुपए कमाने वाले फिल्मी सितारे हो गए?
हाँ, या सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स। हम सभी अवचेतन रूप से उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं।
ये कड़वी सच्चाई है। सफलता का पूरा ढांचा इन्हीं छवियों पर टिका है।
तो उपदेशक अपनी मंडली से कहता है कि इन सांसारिक पैमानों पर सफल होना कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है। वो उन्हें ईश्वर की नजर में अमीर या रिच टुवर्ड्स गॉड बनने के लिए प्रेरित करता है।
अच्छा।
वो उनके सामने एक अलग ही हॉल ऑफ फेम रखता है, जिसमें अब्राहम, मूसा और वे तमाम प्राचीन शहीद शामिल हैं जिन्होंने सत्य के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। और इसके बाद वो जीवन की तुलना एक विशाल स्टेडियम में चल रही प्रतियोगिता से करता है।
ये स्टेडियम वाली छवि कैसे काम करती है?
वह एक कल्पना देता है कि यह जीवन एक महान खेल है, और इस स्टेडियम की जो दर्शक दीर्घा है, वहां कोई आम लोग नहीं बैठे हैं।
तो कौन बैठा है?
वहां स्वर्ग के दर्शक, वे प्राचीन महान नायक बैठे हैं, जो आपके हर सही कदम पर, हर संघर्ष पर खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं।
अरे वाह।
ये एक बहुत ही रोमांचक और ऊर्जा से भर देने वाली तस्वीर है ना, जो किसी भी हार मानने वाले इंसान में नई जान फूंक सकती है।
तो इस सब का क्या मतलब है? मतलब यहाँ एक व्यवहारिक सवाल उठता है, आज के परिप्रेक्ष्य में ये सब थोड़ा अव्यवहारिक या अनरियलिस्टिक नहीं लगता?
कैसे?
हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ सफलता को बैंक बैलेंस और समाज में रुतबे से मापा जाता है। आधुनिक दुनिया के इन पैमानों को छोड़कर प्राचीन काल के शहीदों को अपना आदर्श मानना क्या आज के इंसान के लिए सच में संभव है? क्या हम खुद को इस दुनिया से कांटे बिना ऐसा कर सकते हैं?
अगर हम इसे व्यापक तस्वीर से जोड़े ना, तो ये समझ आता है कि ये दुनिया से कटने या जंगल में चले जाने के बारे में है ही नहीं।
तो फिर किसके बारे में?
ये अंतिम पुरस्कार या अल्टीमेट प्राइज की परिभाषा को बदलने के बारे में है। जब आप जीवन का लक्ष्य किसी ऐसी चीज को बना लेते हैं जो इस दुनिया की सतही नजरों से परे है, तो समाज की शर्मिंदगी का असर ही खत्म हो जाता है।
मतलब उनका ओपिनियन मैटर नहीं करता फिर?
बिल्कुल। जो लोग समाज में अलग थलग पड़ रहे थे, उपदेशक ने उन्हें ये देखना सिखाया कि समाज का ये विरोध वास्तव में एक तरह की ट्रेनिंग है।
अच्छा।
जैसे एक एथलीट दर्द सहने के बाद ही मजबूत होता है,
ठीक वैसे ही
उस सामाजिक दबाव ने उस बड़ी प्रतियोगिता के लिए तैयार कर रहा था। ये उस महान मानसिकता का असली रहस्य है कि समाज के तिरस्कार को अपने चरित्र निर्माण के हथियार में बदल लेना।
वाओ।
जो चीज आपको कमजोर करने के लिए फेंकी जा रही है, उसी का इस्तेमाल अपनी ताकत बढ़ाने के लिए करना।
ये सच में अद्भुत है। मतलब ये केवल धर्म की बात नहीं रह जाती, ये एक अभेद्य मनोवैज्ञानिक रक्षा प्रणाली है।
बिल्कुल।
अगर इस पूरी गहन चर्चा को समेटा जाए तो ये स्पष्ट हो जाता है कि इब्रानियों का ये प्राचीन पाठ सिर्फ एक पुरानी किताब का हिस्सा भर नहीं है।
हाँ।
ये नेतृत्व, संचार कौशल और मानव मनोविज्ञान की एक बेजोड़ मास्टर क्लास है। मतलब ये सिखाता है कि जब लोग टूटने लगें, तो उन्हें उनकी छोटी समस्याओं में मत उलझने दो।
सही बात है।
बल्कि उन्हें एक ऐसा बड़ा ब्रह्मांडीय नजरिया दो जो उन्हें वापस खड़े होने की ताकत दे।
और ये भी कि इंसानी महत्वाकांक्षाओं को मारना नहीं है, बल्कि बस ये तय करना है कि वो दौड़ किस दर्शक दीर्घा के सामने दौड़ी जा रही है।
बिल्कुल सही कहा आपने। और डॉक्टर डिसिल्वा के नोट से एक और गहरा सत्य सामने आता है, जिस पर हम सबको गहराई से विचार करना चाहिए। यह विचार करने योग्य बात है कि किसी भी समाज या संस्कृति का भविष्य ना इस बात से तय होता है कि वो किन नायकों को पूजता है और किन आदर्शों को सबसे ऊपर रखता है।
बिल्कुल।
ऐसे में उस संस्कृति या समाज का क्या भविष्य होगा जिसके आदर्शों की सूची में सत्य के लिए महान त्याग करने वाले नायकों के बजाय सिर्फ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और अरबपति ही बचे रह जाएं? क्या ऐसी संस्कृति कभी कोई महान और स्थायी इतिहास रच पाएगी? शायद सोचने वाली बात यही है। तो अगली बार जब मन का वो धुंधला पानी सामने आए, तो शायद उसी प्राचीन उपदेशक की तरह समस्याओं से परे उस बड़े परिदृश्य की ओर देखने की जरूरत होगी।